हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सोनल परी ने बचाया था, वो भी तारा परी के मार्गदर्शन पर और उसकी कुछ शक्तियों के द्वारा, क्योंकि तारा परी ने सोनल परी को अपनी कुछ विशेष शक्तियाँ भी दी थीं, जिसका इस्तेमाल वो वक्त आने पर कर सकती थी, जो कि सोनल परी ने बखूबी किया था। तब सोनल परी ने डिसाइड किया था कि उसे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और क्योंकि अगली सुबह उसके लिए बहुत बड़ी होने वाली थी, अगली सुबह उन्हें सबसे पहले जल्द से जल्द कॉल ट्रैकिंग का सिस्टम स्टार्ट करना था, क्योंकि ये महीना कंप्लीट होने के लिए 8 से 10 दिन ही बचे थे, और काव्या और कमिश्नर साहब के कहने के मुताबिक और 10 दिन पहले ही वो परछाई जिस भी लड़की को अपना निशाना बनाना चाहता था वो उसे परेशान किया करता था। तो कहीं ना कहीं काव्या और अमन अब दोनों को ही इस बात का यकीन जो था, जिस भी लड़की को परछाई दिखाई देगी, यानी मतलब शैडो दिखाई देगी, तो वो अपने किसी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, जो किसी न किसी से, जिससे कि वो अपने मन की बात शेयर करती हो, वो ज़रूर शेयर करेंगी। तो कहीं ना कहीं और दोनों को एक बात का यकीन था, तो इसीलिए उन्होंने अब जल्दी ही सारा का सारा सेटअप तैयार कर लिया था। सोनल परी ने अक्षत की यादों को पूरी तरह से भुला दिया था, क्योंकि जिस दिन वो पहली बार अमन के ऑफिस में जाते वक्त तक उससे टकराई थी, उसके दिल में अक्षत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था। लेकिन जब सोनल परी ने परी बनकर जान बचाई और उसने ये देखा कि अक्षत के अंदर का दानव अमन पर आक्रमण करना चाहता है, वो भी उसके नाजुक पल में, तो इसीलिए सोनल परी ने उस दानव को खत्म कर दिया था। और उस दिन उसे रियल अक्षत देखने को मिला था। ये अक्षत ज्यादा खड़ूस या फिर इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ उस दानव की वजह से हो गया था। सोनल परी पूरी रात अक्षत को देखते रही थी और अक्षत पूरी रात उसके हाथ पर सोया हुआ था। वो उस वक्त काफी ज्यादा डरा हुआ था और इसीलिए सोनल परी का दिल ही नहीं किया कि वो उसे छोड़कर वापस बगीचे में जाए। लेकिन पूरी सुबह होने से पहले ही वो वहां से गायब होकर बगीचे में पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसे आज अमन के साथ आगे मिलकर काम जो स्टार्ट करना था, और जल्दी ही वो तैयार होकर अमन के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच चुकी थी। सोनल परी जैसे ही वहां गई तो ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई थी कि एक नॉर्मल सी किराने की दुकान थी और उसके अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा होकर नीचे बेसमेंट में जा रहा था। और जैसे ही सोनल परी वहां गई, उसने देखा कि वहां पर कम से कम पूरे 10 से 12 लोगों की उंगलियां लगातार स्क्रीन पर चल रही थीं और एक बड़ी सी स्क्रीन उनके सामने चल रही थी। जैसे ही सोनल परी ने ये देखा वो थोड़ा सा चौंक गई थी, लेकिन जल्दी उसे वहां पर जिन महाराज अमन दिखाई दिए गए थे, जो कि बड़े ही पावरफुल ओरा के साथ बैठे हुए थे। अमन को देखकर सोनल परी हैरान हो गई थी, जल्दी ही वो उसके पास जाकर खड़ी हो गई थी। सोनल को देखकर अमन ने उसे कहा था, मिस काव्या, अच्छा हुआ आप आ गई हैं, क्या आपसे आपकी चुनौतियाँ शुरू होती हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ों पर नज़र रख सकती हैं। वैसे तो ये सब भी कॉल सुनेंगे, लेकिन उनको उसमें से उस शैडो वाले कॉल को कैसे पहचानना है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही बता सकती है। जो भी कॉल इन लोगों को सस्पिशियस लगेगी वो सबसे पहले आपको बताएंगे, आप समझ रही हैं ना मेरी बात? जैसे ही अमन ने ये कहा, जल्दी सोनल परी ने अपना सर हाँ में हिला दिया था और कहने लगी थी, ये जी। जैसे ही अचानक से सोनल के मुँह से पूरा जीजू निकलने ही वाला था, अचानक उसने खुद को रोक लिया था और अमन जीजू सुनकर हैरान हो गया था और कहने लगा था, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। तभी जल्दी से काव्या बोली थी, सॉरी सर, मेरा मतलब है कि मैं जो भी आपने मुझे काम किया है मैं उसमें अपना 100% दूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार की मेरी ये स्टोरी 100% कामयाब होगी और इतना ही नहीं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी होगी। तब जल्दी ही अमन ने सोनल परी से कहा था, वाकई आप मेरी इस काम में मदद कर रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी सोनल ने अमन से कहा था, ये सब सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए कर रही हूँ कि अगर मेरी ये स्टोरी इस सबूत के साथ सक्सेस हो जाती है तो आप नहीं जानते कि मुझे कितनी बड़ी कामयाबी मिल सकती है। वैसे भी 8 दिन की तो बात है, मैं ये काम जरूर करूंगी। जैसे ही काव्या ने ये कहा अमन मुस्कुरा दिया था और तभी काव्या ने अमन से कहा था, सर एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है अगर वो परछाई वाला खूनी किसी भी लड़की को अपना निशाना बनाता होगा तो वो उन्हें दिन के समय नहीं बल्कि रात के समय ही परेशान करता होगा, तो हमें दिन की जगह रात की कॉलिंग पर ज्यादा ध्यान देना होगा। वैसे भी दिन में तो आपका ऑफिस वगैरह का काम रहता है, रात को तो आप यहाँ आ सकते हैं। जैसे ही सोनल ने ये कहा अमन ने उसकी हाँ में यहाँ मिला दी थी और कहने लगा था, शायद तुम ठीक कह रही हो, रात को मैं यहाँ आ जाऊँगा और दिन में अपना काम करूँगा। ऐसा कहकर अमन वहाँ से जाने लगा था और काव्या यानी सोनल वहाँ आराम से बैठ गई थी, क्योंकि उसे कॉल सुनने की फॉर्मेलिटी ही करनी थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि नेक्स्ट कॉल कब आने वाली थी। क्योंकि ऑलरेडी उस तीसरे सफेद जिन ने एक दूसरी लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया था और अब सोनल पर ही अपनी जादुई शक्ति से आध्या को से उसके किसी दोस्त को कॉल करवाने वाली थी और वो ज्यादा देरी ना करके वो कॉल आज रात को ही करवाने वाली थी जब अमन खुद वहां मौजूद होगा, क्योंकि सोनल परी जल्द से जल्द अमन को उस जिन तक लेकर जाना चाहती थी ताकि अमन उस तीसरे जिन को सजा दे और शायद उसके बाद तारा का पृथ्वी लोक आने का रास्ता साफ हो जाए। बेल जल्दी से जल्दी तारा परी ने अपना कड़ा तप करना शुरू कर दिया था। वो अच्छी तरह से जानती थी वो भले ही अमन के साथ ना हो लेकिन वो कड़ा तप करके अमन की मदद जरूर कर सकती थी, तो इसीलिए तारा परी अपने कड़े तप के द्वारा सोनल परी की मदद करना चाहती थी। वो अच्छी तरह से जानती थी तीसरे जिन से मुकाबला करना जिन महाराज अमन के लिए भी काफी नहीं होगा। बेल वहीं दूसरी ओर सोनल परी ने जल्दी ही फोन करके अमन को अपने पास बुला लिया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसे जल्द से जल्द वो कॉल कंप्लीट करवानी थी क्योंकि तारा का समय बहुत ही ज्यादा तेजी से भाग रहा था और ऊपर से तारा के परीलोक में होने की वजह से उस राक्षस के अंदर अजीब तरह की हरकतें होना शुरू हो गई थी और उस राक्षस ने सीधे सीधे तारा को धमकी भी दे दी थी कि वो जल्द से जल्द पूरी तरह से इस मूर्छित अवस्था से बाहर निकलकर परीलोक के साथ साथ पृथ्वीलोक को भी नष्ट करके तारा को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन तारा ऐसा कभी भी नहीं होने देगी। उसने सोच लिया था वो उस राक्षस को पूरी तरह से मारना चाहती थी और इसके लिए उसे जो कुछ भी करना पड़े वो करेगी। तो ये सोचते हुए जल्दी ही तारा परी ने कड़ा तप करना शुरू कर दिया था और सोनल परी ने जल्दी ही उस लड़की के मन में उसके खास दोस्त को कॉल कराने के जज्बात डाल दिए थे, जो लड़की अब तीसरे जिन का शिकार बनने वाली थी, और अपने जादू से उसने उसके एक दोस्त को कॉल करवा दिया था। उस लड़की का नाम कुछ और नहीं बल्कि आध्या था। आध्या को दो दिनों से काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। हर रात को जब भी वो सोई थी उसे अपनी खिड़की पर, अपने बेड पर, अपने आसपास से सिर्फ और सिर्फ अलग तरह की परछाई नजर आया करती थी। आध्या काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। पहले तो उसने अपना भ्रम समझकर इसे इग्नोर कर दिया था लेकिन जब आज एक बार फिर उसे परछाई दिखाई दी तो उसका दिल अचानक से अपने फ्रेंड से बात करने को हुआ था।
उसका वो फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि उसका एक बहुत अच्छा कॉलेज का पुराना दोस्त विवेक था, तो इसीलिए सोनल ने अमन के ठीक आते ही वो कॉल सुनवानी शुरू कर दी थी। आध्या अपने दोस्त से कह रही थी कि उसे अपने घर पर अजीब सा डर लग रहा है, अजीब सी परछाई उसे नजर आ रही है। जैसे ही उसके दोस्त से उसकी बात सुनी वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, अरे तुम तो खुद एक भूत जैसी दिखती हो, भला तुम्हें परछाई कैसे नजर आने लगी? मुझे पता है तुम मुझे बुद्धू बना रही हो, मुझे अच्छी तरह से याद है पिछले साल तुमने मुझे किस तरह से डराया था और अब फिर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। तभी आध्या अपने दोस्त की बात सुनकर जल्दी से बोली थी, नहीं नहीं विवेक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, पिछले दो दिनों से मेरी हालात कुछ अजीब सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आसपास कोई है लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही अमन ने उसकी बात सुनी जल्दी ही उसने उस लड़की की कॉल को ट्रेस करवा लिया था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एक स्कूल मास्टर की बेटी थी, आध्या कुमारी। तो इसीलिए अमन को ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा था और उसका एड्रेस उसकी आंखों के सामने मौजूद था और उसे जल्द से जल्द सिर्फ और सिर्फ आध्या के पास जाना था। काव्या को पूरी उम्मीद थी कि आज रात को ही इसके साथ कुछ होने वाला है। मुझे लगता है हमें देरी नहीं करना चाहिए, हमें अभी रात में ही उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। जैसे ही सोनल ने ये कहा अमन कुछ सोचने लगा था। वैसे भी वो सुबह जाना चाहता था लेकिन सोनल की बात सुनकर उसने अपना इरादा बदल दिया था, तो इसीलिए उसने सोनल परी से कहा था, ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो मैं जरूर आज ही जाऊंगा। ऐसा कहकर अमन ने पूरी की पूरी कॉल ट्रेस करने वाली टीम को वहां से रवाना कर दिया था, उन्हें ढेर सारी रकम देने के बाद। वेल, सोनल परी और अमन जल्दी ही आध्या के घर में जाने के लिए एक साथ निकल चुके थे। वहीं तारा परी मन ही मन में सोनल परी से बात कर रही थी और सारी जानकारी हासिल कर रही थी। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। कहीं ना कहीं सोनल परी को अमन के करीब भेजकर तारा परी इस बात का एहसास कर रही थी कि मानो कि वो अपने अमन के बहुत ही ज्यादा करीब है। वेल, जल्दी ही सोनल और अमन आध्या के घर के पास पहुंच चुके थे लेकिन इतनी रात को इस तरह से मास्टर जी के घर पर भला वो कैसे जा सकते थे? और अमन अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करते हुए भी आध्या के कमरे में नहीं जा सकता था क्योंकि काव्या उसके साथ थी। वहीं काव्या भी मन में यही बात सोच रही थी कि अगर अमन उसके साथ नहीं होता तो अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए आध्या के कमरे में चली जाती। वो कितनी ही देर तक दोनों आध्या के घर के बाहर बैठे रहे थे लेकिन उन्हें बैठे हुए अब तकरीबन रात के 3 बज चुके थे और 3 से 3:30 के बीच अचानक से आध्या के कमरे में उसके चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी और जल्दी ही आध्या का पूरा घर उठकर बैठ गया था और उसे चीखने की दिशा में जाने लगा था। क्योंकि आध्या के बाद अच्छी तरह से शांति से कभी अच्छी तरह से अमन की शक्तियों को जानती थी। वो ये भी जानती थी कि अगर अमन चाहता तो एक ही पल में अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करते हुए आध्या के कमरे में पहुंच सकता था लेकिन काव्या की वजह से वो वहां नहीं गया था। तो वहां अमन की मुश्किलों का आसान करने के लिए सोनल परी ने जल्दी ही तारा परी के मार्गदर्शन पर अमन से कहा था कि आप एक काम कीजिए, आध्या के घर के पीछे चले जाएं और हो सकता है कि वहां पर आपको वो खूनी मिल जाए। तो जैसे ही काव्या ने ये कहा अमन मुस्कुरा उठा था। कहीं न कहीं उसे अपनी शक्ति का प्रयोग करने का रास्ता नजर आने लगा था और जल्दी ही वो आध्या के घर के पीछे चला गया था। और जैसे ही वहां गया तो उसने देखा कि आध्या अपने आप ही दौड़ते हुए बिना किसी पत्थर के ऊंचाई के ढलान के कीचड़ के धूल के दौड़ती हुई चली जा रही थी। जैसे ही अमन ने ये देखा उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो समझ चुका था कि ये जरूर उसका तीसरा जिन ही है, तो इसीलिए अमन ने जल्दी से आगे बढ़कर मान की तेज दौड़ने वाली शक्ति का प्रयोग करते हुए आध्या और उस तीसरे जिन का पीछा करना शुरू कर दिया था। लेकिन अभी वो उसके करीब तक पहुंच भी नहीं पाया था कि तभी अचानक आध्या वहां से गायब हो चुकी थी। अमन का गुस्से के मारे बुरा हाल हो चुका था। उसने दोनों अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था और जल्दी ही अमन अपने सामने की ओर देखते हुए बोलने लगा था, बहुत शौक है ना तुझे अपने जिन महाराज से छुपम छुपाई खेलने का, अब देखो तुम्हारा जिन महाराज तुम्हारा क्या हाल करता है। ये सोचते हुए अमन जल्दी ही खतरनाक प्लान तैयार करने लगा था। वेल, पहले तो अमन जल्दी से गायब होकर सोनल परी के ठीक पीछे आ गया था और जैसे ही काव्या ने अपने पीछे अमन रो देखा वो हैरान हो गई और कहने लगी थी, क्या हुआ अमन सर, खूनी का कुछ पता चला? तभी अमन ने जल्दी से काव्या से कहा था, मिस काव्या मुझे लगता है तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, माफी चाहता हूँ कि इतनी रात को मैं तुम्हें घर जाने के लिए कह रहा हूँ, कायदे में तो मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए जाना चाहिए लेकिन मैं एक आदमी को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ क्योंकि क्या वक्त रहते अमन आध्या को बचा पाएगा, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।